ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक नई दिल्ली में जारी है। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि आज पहले दिन संबंधित मंत्रालय इस बारे में सिर्फ जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी और उसके आधार पर आगे बढ़ने का फैसला करेगी।
हम प्रयास करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी ओपिनियन, जिसकी राय बहुत अहम है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हों, चाहे सिविल सोसाइटी से हों, चाहे जुडिशरी से हों, अलग अलग क्षेत्र से पॉलिटिकल पार्टीज हों, कि हम सबको सुने, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है उसको हम ओपन माइंड से उसको एग्जामिन करेंगे।
39 सदस्यीय समिति में 27 सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा से हैं। यह समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे विशाखापत्तनम के निकट पुदीमदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क योजनाओं का भी शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज सवेरे ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इसमें 75 देशों से आए लगभग 6,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लोग ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी परिचित होंगे। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी दिवस कार्यक्रम से हुई। इसका आयोजन ओडिशा सरकार ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया और कहा कि भारत में अमृत काल में विकसित भारत की यात्रा शुरू हुई है। सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे। सम्मेलन की एक खास बात, इसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कांगलू की वर्चुअल उपस्थिति है। वे सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका में दो भारतीय अमेरिकी कन्नन श्रीनिवासन और जेजे सिंह वर्जीनिया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हुए विशेष चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। श्रीनिवासन को राज्य की सीनेट के लिए चुना गया है जबकि सिंह राज्य प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए हैं। तमिलनाडु में पले बड़े श्रीनिवासन अमेरिका जाने से पूर्व भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। बांग्लादेश में आवर्जन तथा पासपोर्ट विभाग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं क्योंकि वे लोगों को जबरन गायब करने और जुलाई में हुई हत्याओं में कथित रूप से शामिल थे। मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अब्दुल कलाम आजाद ने कल शाम ढाका में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। घाना में जॉन रामानी महामा ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रपति की शपथ ली। श्री महामा ने अपने संबोधन में कहा कि शपथ ग्रहण घाना के इतिहास में नया अध्याय है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसें लगाई जाएंगी। मुख्य स्नान के दिनों में सुव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज के आसपास से आने वाली बसों को बाहरी मेला क्षेत्र में स्थापित 8 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया जाएगा। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन के समय ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इस बीच दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कहा कि दृश्यता में सुधार होने के कारण सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।